नमस्कार भारत, आज है सितंबर महीने की 16 तारीख दिन सोमवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले के बाद कच्चे तेल के दाम बढ़े, ईरान ने अमेरिका पर पलटवार किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला में पहला T20 मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ। BHU में कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ छात्रों का धरना प्रदर्शन खत्म।
हमारी जो मांग थी कि हम प्रोफेसर को बर्खास्त किया जाए, तो उन्हें अभी लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया, लेकिन बर्खास्त नहीं किया गया।
यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच स्वामी चिन्मयानंद का आश्रम बना चर्चा का केंद्र।
परिसर में समाज कल्याण का हॉस्टल जिसमें लगभग 45 छात्राएं वहां पर रह रही हैं।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
सऊदी अरब का कहना है कि दो तेल रिफाइनरियों पर हमले के बावजूद वो तेल उत्पादन में कमी नहीं आने देगा। रियाद में अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही नुकसान के एक तिहाई हिस्से की पूर्ति कर ली जाएगी, लेकिन सोमवार को बाजार खुलने पर तेल की कीमतों में उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कारोबार की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमत में 19% की बढ़ोतरी हुई है। एक बैरल का दाम बढ़कर $71.95 पर आ गया है। अमेरिका इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के आरोपों से इनकार किया है। हांगकांग में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प जारी है। इससे पहले दोपहर में उत्तरी हिस्से में लोकतंत्र समर्थकों और चीन समर्थकों के बीच हिंसा हो गई थी। हांगकांग के केंद्रीय इलाकों में भी झड़पें हुई थी, जहां पुलिस ने लोकतंत्र समर्थकों पर पानी की तेज बौछार और आंसू गैस के गोले छोड़े थे। उस वक्त हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे और हिंसक हो गए थे। उन्होंने पेट्रोल बम फेंके, बैरिकेड लगाए और सबवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाया। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे राउंड में स्वतंत्र उम्मीदवार कैस सईद और ट्यूनीशिया के कारोबारी व नेता नबील कहुई ने जगह बना ली है। नबील कहुई इस समय जेल में है। ट्यूनीशिया के चुनाव आयोग का कहना है कि 2014 के पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान में काफ़ी कमी आई है। नबील कहुई की पत्नी सलवा स्मैओई ने अपने पति के शीर्ष दो में जगह बनाने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, 26 उम्मीदवारों में शीर्ष दो में जगह बनाने का मतलब है कि आपने जुल्म, गरीबी और हाशिए पर रहने को ना कह दिया है। आपने कानून के शासन के लिए अपनी हामी भर दी है। ये थी नबील कहुई की पत्नी सलवा स्मैओई। सीरियाई शहर अल राई के स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक एक अस्पताल के पास हुए कार बम विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक फार्मासिस्ट और उनके दो बच्चे भी शामिल हैं। तुर्की की सीमा के नज़दीक ये शहर तुर्की से समर्थन प्राप्त विद्रोहियों के कब्जे में है। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक बम एक रेफ्रिजरेशन ट्रक में रखा हुआ था जो अस्पताल के बाहर खड़ा था। ट्यूनीशिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसियों ने इसे एक आतंकी घटना कहा है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमेरिका में जनरल मोटर्स के लगभग 50,000 कर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमिक संघ ने रविवार आधी रात से हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स ने कहा है कि जनरल मोटर्स के प्रबंधन से मतभेद खत्म ना होने के चलते ये कार्रवाई की जा रही है। श्रमिक संघ जनरल मोटर्स के ओहियो और मिशिगन में स्थित कार असेंबल प्लांट को बंद करने की योजना का विरोध कर रहा है। श्रमिक संघ के प्रवक्ता ब्रियन रॉथनबर्ग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए कहा, आज रात बहुत से प्लांट काम नहीं करेंगे, अधिकतर प्लांट का संचालन नहीं होगा। कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे और प्लांट के बाहर इकट्ठा होंगे। ये थे अमेरिका में श्रमिक संघ के प्रवक्ता ब्रायन रॉथनबर्ग। जिम्बाब्वे में डॉक्टरों के एक संघ के प्रमुख को सुरक्षा बलों द्वारा अगवा किए जाने की आशंका जताई जा रही है। जिम्बाब्वे हॉस्पिटल डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि पीटर मेगुम्बे ने शनिवार के बाद से कोई बात नहीं की है। उन्होंने शनिवार को एक संदेश भेजा था कि उन्हें 3 लोगों ने अगवा कर लिया है। डॉक्टर पीटर मेगुम्बे ने कुछ समय पहले एक हड़ताल भी आयोजित की थी। जिम्बाब्वे में डॉक्टरों के मानवाधिकार के लिए काम करने वाले एक एसोसिएशन ने इस अपहरण को स्वास्थ्य पेशे पर हमला बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रैड कैवनो के खिलाफ लगे यौन दुराचार के नए आरोपों को खारिज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रैड कैवनो की सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति की थी। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी। मेरा नाम है संदीप सोनी। सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर शनिवार को हुए ड्रोन हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमत बीते चार महीने में सबसे अधिक दर्ज की गई है। हमले के लिए अमरीका ने ईरान को जिम्मेदार बताया है। इसके जवाब में ईरान ने अमरीका पर पलटवार करते हुए कहा कि अमरीका दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद भी कभी आईना देखे। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए कमलेश मठेनी से।
آمریکایی‌ها به جای اینکه خودشون رو محکوم بکنن و اعتراف کنن که حضور اونها در منطقه
یہ ہے ایران کے راشٹرپتی حسن روحانی جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ دوسروں پر آروپ لگانے کے بجائے یہ سویکار کرے کہ سیریا اور یمن میں اس کی موجودگی سے سمسیائیں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ اسے پہلے ایران کے ودیش منتری جاوید ظریف نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کرنے کا بہانہ کھوج رہا ہے۔ یمن میں موجود ہوتی ودروہیوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے ان پر بم برسائے تھے۔ اس کے جواب میں انہوں نے سعودی عرب کے تیل ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ ہوتی ایئر ڈیفنس کے پروکتا عبداللہ کہہ رہے تھے، ہم پشٹی کرتے ہیں کہ یہ حملے یمن سے کیے گئے ہیں۔ وہ یدی کہتے ہیں کہ اس میں ایران یا حزب اللہ کا ہاتھ ہے تو یہ ان کی ناکامی ہے۔ ان بیانوں کے بیچ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ یہ سنشچت کر رہا ہے کہ تیل کی کمی نہ ہونے پائے۔ हमलों से सऊदी तेल निर्यात में गिरावट आई है, लेकिन रियाद में अधिकारियों का कहना है कि एक तिहाई नुकसान की भरपाई मंगलवार से पहले कर ली जाएगी। यूरोपीय संघ का कहना है कि सऊदी तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले मध्य पूर्व में सुरक्षा के लिए वाकई बड़ा खतरा है। यमन में ईरान से जुड़े हुती ग्रुप के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हमले के लिए 10 ड्रोन भेजे गए थे। चेतावनी दी गई है कि सऊदी अरब पर भविष्य में ऐसे और हमले हो सकते हैं। इस घटनाक्रम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। जानकार मानते हैं कि अगले कुछ महीने तेल के दाम के हिसाब से अहम हो सकते हैं। बीबीसी के कूटनीतिक मामलों के संवाददाता जोनाथन मार्कस का मानना है कि मध्य पूर्व पहले से ही अस्थिर था और ड्रोन हमलों ने इस अस्थिरता को अधिक बढ़ा दिया है। हुती विद्रोही कह रहे हैं कि हमला उन्होंने किया, लेकिन अमरीका जोर देकर ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है और ईरान इससे इनकार कर रहा है। इस घटनाक्रम से ये बहस दोबारा शुरू हो गई है कि ईरान किस हद तक हुती विद्रोहियों की तकनीकी मदद कर रहा है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अपनी एक रिपोर्ट में इस ओर इशारा किया था कि ईरान और हुती विद्रोहियों की तकनीक में काफ़ी समानता है। तब ये माना गया था कि ईरान ने यमन के खिलाफ हथियारों की पाबंदी को तोड़ा है और हुती विद्रोहियों को तरह तरह के हथियार मुहैया कराए हैं।
रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश मठेनी। भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में नाव डूबने से कम 12 लोग मारे गए हैं और 35 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हैदराबाद से वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उमर फारूक, ये घटना रविवार दोपहर की है, क्या रात के वक्त कुछ तलाशी अभियान चला और उन लोगों का पता चल पाया जो नाव डूबने के बाद लापता हो गए थे?
जिस जगह ये दुर्घटना हुई है वो काफी दूर है और वहां पर न तो मोबाइल के सिग्नल मिलते हैं और ना ही वहाँ कोई बिजली की आपूर्ति का कोई प्रबंध है। तो कल जब रात शाम अंधेरा हुआ तब से वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब सुबह फिर शुरू हुई है कार्रवाई और कल शाम तक ही 12 लोग मिले थे, 12 लोगों के शव। अभी लगता है कि 35 के करीब लोग लापता हैं और उनके मिलने की आशा जो है वो टूटती जा रही है। आशंका ये बढ़ गई है कि लगभग 47 लोग इस दुर्घटना में मरे हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जा रही है जो इस इलाके में हुई है। ये एक बहुत बड़ा केंद्र है पर्यटन का, काफी लोग दूर से आते हैं इस जगह, बहुत खूबसूरत जगह है वो देखने के लिए और वहाँ काफी कश्तियां ऐसी चलती हैं। लेकिन जिस वक्त ये कश्ती चली है उस पर लोगों को आश्चर्य है क्योंकि जब भी बाढ़ आती है गोदावरी में इन कश्तियों को बंद कर दिया जाता है। तो ये शायद पहली कश्ती थी बाढ़ के बाद जो वहां पे चल रही थी। कहा जा रहा है कि पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश भी की, लेकिन खुद जो लोग सवार थे, टिकट लेके उसमें सवार हुए थे, वो पर्यटक खुद नाराज हो गए पुलिस से कि आप क्यों रोक रहे हैं, जब आपको नहीं चलाना था तो आपने टिकट क्यों दिया। इस तरह की बहस हुई और उसके बाद ये कश्ती चली और जिस जगह ये हुई है वहां पर गोदावरी नदी की गहराई तकरीबन 250 फीट है। मैं खुद एक मरतबा उस जगह जा चुका हूँ, तो ये जो कश्तियां हैं उसमें दो मंजिल होती हैं, एक तो नीचे जो है जो एयर कंडीशन होती है और ऊपर खुली होती है। कहा जा रहा है कि लोगों को सबको लाइफ जैकेट दिया गया था, लेकिन उनमें से कई लोगों ने इसलिए निकाल दिया कि उसमें काफी गर्म वो महसूस कर रहे थे अपने आप को, गर्मी काफी थी उस वक्त वहां पे। जो कंपनी चला रही थी उस कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि उस जगह पे आमतौर पे भंवर बन जाता है जब पानी की गति बहुत तेज होती है। ऐसा ही कुछ हुआ, कश्ती एक तरफ लुढ़की और लोग कुछ जो जैकेट पहने हुए थे वो पानी में कूद गए और बहुत सारे लोग निचली मंजिल में फंसे हुए हैं। कश्ती बहुत गहराई में है, अधिकारियों का कहना है कि अगर उसको निकाला गया तो शायद उसमें से कुछ शव निकल सकते हैं, जबकि कुछ लोग शायद बह के समंदर तक भी पहुंच गए हों, उनको ये इस बात की आशंका है।
जानकारी दे रहे थे हैदराबाद से उमर फारूक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में शनिवार शाम से शुरू हुआ छात्र छात्राओं का धरना प्रदर्शन रविवार देर रात खत्म हो गया। छात्र छात्राएं यौन उत्पीड़न के एक कथित मामले में एक प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई न होने के विरोध में विश्वविद्यालय के पास धरना दे रहे थे। उनका दावा है कि विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर के दोषी पाए जाने के बाद भी उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की। धरना प्रदर्शन के बाद अब BHU ने अभियुक्त प्रोफेसर को इस मामले पर पुनर्विचार होने तक के लिए छुट्टी पर भेज दिया है। धरने में शामिल एक छात्रा आकांक्षा से बात की BBC संवाददाता गुरप्रीत सैनी ने।
अभी हमारा प्रोटेस्ट जो है वो हमने उसे मार्च के साथ कॉल ऑफ कर लिया है, क्योंकि हमारी आधी मांग मानी गई है, पूरी नहीं मानी गई। हमारी जो मांग थी कि हम प्रोफेसर को बर्खास्त कराए, प्रोफेसर को बर्खास्त किया जाए, तो उन्हें अभी लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया, लेकिन बर्खास्त नहीं किया गया। जो BHU की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो बैठेगी, अपने निर्णय को वो रिव्यू करेगी क्या वो सही था, और अगर उन्हें गिल्टी फिर से पाती है तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। अभी हमारी छोटी सी जीत हुई है और हमने ये भी डिमांड की थी कि यहाँ GS कैश लागू हो, तो GS कैश की जगह उन्होंने कहा है कि अगर ICC जो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, अगर वो उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करेगी। कि जैसे GSM की मेन बात यही होती है कि उसमें स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है तो वो ट्रांसपेरेंसी होती है, तो उस वही GS कैश में उन्होंने ICC में उन्होंने इसको इंश्योर करने की बात की है। और हमने कहा था कि जितने भी प्रोटेस्टर हैं, लड़कियां हैं, उनको कोई भी टारगेट करके ऐसा, जैसे हम लोग के कल धमकी मिल रही थी कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, तो हम ये चाहते थे कि BHU प्रशासन इंश्योर करे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि उन्होंने इंश्योर किया है, लेकिन अभी आगे जाके पता चलेगा कि ऐसा होता है कि नहीं।
और विज्ञान की छात्राओं के हॉस्टल पर ताला लगा दिया गया था, अभी क्या स्थिति है?
हमने ये भी मुद्दा उठाया था तो उन्होंने कहा कि जैसे ये मामला आया हम संज्ञान में लिए हैं कि लड़कियों के हॉस्टल में ताला क्यों लगा है और हमने खुलवाया है, जबकि वहाँ पे जो आदेश था उसमें यही लिखा था कि कुलपति के आदेश से ये बंद किया गया, तो ये दोहरा चरित्र तो प्रशासन का दिखा ही रहा है।
BHU की छात्रा से बात कर रही थी गुरप्रीत सैनी। कार्यक्रम में आगे दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियां, लेकिन पहले बात स्वामी चिन्मयानंद की। स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर का मुमुक्षु आश्रम इस समय चर्चा के केंद्र में है। स्वामी चिन्मयानंद इसी आश्रम के सर्वे सर्वा हैं। इस आश्रम के तहत कई शिक्षण संस्थाएं संचालित होती हैं, जिनमें चर्चित SS लॉ कॉलेज भी शामिल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक लंबे चौड़े क्षेत्र में फैले इस आश्रम का इतिहास भी विवादों से अछूता नहीं रहा। शाहजहांपुर से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
शाहजहांपुर बरेली मार्ग पर मुख्य सड़क पर ही करीब 21 एकड़ में बने मुमुक्षु आश्रम की पहचान जितनी एक धार्मिक संस्था के तौर पर होती है उससे ज्यादा शिक्षा के केंद्र के रूप में। वजह यह है कि आश्रम परिसर में ही इंटर कॉलेज से लेकर PG कॉलेज तक 5 शिक्षण संस्थान इसी के तहत संचालित होते हैं। मुमुक्षु आश्रम की स्थापना इस क्षेत्र के मशहूर संत स्वामी सुखदेवानंद ने आज़ादी से पहले ही की थी। मुमुक्षु आश्रम के प्रबंधक श्री प्रकाश डबराल बताते हैं।
स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज ने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी, तदुपरांत 1950 में देवी संपत्ति इंटर कॉलेज की स्थापना की, उसके बाद 1964 में स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय की स्थापना की। सबसे पहले इसके जो संत थे वो स्वामी सुखदेवानंद जी थे। स्वामी निश्चलानंद जी के बाद स्वामी चिन्मयानंद जी यहाँ के मुख्य अधिष्ठाता बने।
गोंडा के मूल निवासी और सन्यासी बनने के बाद हरिद्वार में रहने वाले स्वामी चिन्मयानंद की शाहजहांपुर के इस आश्रम में पहुँचने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। डबराल कहते हैं,
एक देवी संपद महामंडल करके एक मंडल है जो उसी के अंतर्गत स्वामी जी भी यहाँ के साधु थे, इसी मंडल के, ये स्वामी धर्मानंद जी के शिष्य हैं।
दरअसल मुमुक्षु आश्रम जिस मात्र संस्था देवी संपद मंडल का एक हिस्सा है, उसका मुख्यालय हरिद्वार में है। इस संस्था के देश भर में 100 से भी ज्यादा आश्रम हैं, जिनमें 6 आश्रम काफी बड़े हैं। ऋषिकेश का मशहूर परमार्थ निकेतन आश्रम भी इसी संस्था के तहत संचालित होता है। शाहजहांपुर में इस आश्रम के तहत कुल 5 शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं, जिनमें लगभग 10,000 छात्र पढ़ते हैं। स्वामी सुखदेवानंद पीजी कॉलेज यानी SSPG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अवनीश मिश्र अन्य संस्थाओं के प्रबंधन से भी जुड़े हैं। वो बताते हैं,
मुमुक्षु आश्रम के अंतर्गत 5 संस्थाएं स्थापित हैं। ला कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में 500 इंटेक है। टोटल छात्र संख्या हमारी लगभग 1300 है। परिसर में एक समाज कल्याण का हॉस्टल, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राएं रहती हैं, लगभग 45 छात्राएं वहां पर रह रही हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि आश्रम को जमीनें यहाँ के लोगों ने स्वेच्छा से दान में दी थी। इसकी वजह ये थी कि स्वामी सुखदेवानंद का यहाँ बेहद सम्मान था और वो क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं, संस्कृत कॉलेज इत्यादि की स्थापना कर रहे थे। लंबे समय तक स्थानीय लोगों के प्रतिनिधियों की भी आश्रम से संबंधित संस्थाओं में सक्रिय भूमिका रही, लेकिन 1989 में चिन्मयानंद के आने के बाद ये सिलसिला धीरे धीरे खत्म होता गया। आश्रम को जमीन का एक बड़ा हिस्सा शहर के मशहूर ज्वेलर काशीनाथ सेठ ने दिया था। उनके परिजन इस बात को बताते भी हैं, लेकिन उनका कहना है कि विवादों में होने की वजह से वो लोग संस्था से दूर रहने लगे। स्थानीय पत्रकार BP गौतम ने इस बारे में गहरी पड़ताल की है और कई लेख लिखे हैं।
2-3 दशक पहले शाहजहांपुर के सब्रांत और धनाढ्य वर्ग के लोग, जिन्होंने दान दिया था, जमीन दी थी, वो लोग भी ट्रस्ट में पदाधिकारी रहते थे। विधिवत मीटिंगें होती थी, मीटिंगों में बुलाया जाता था, उनके विचार रखे जाते थे। चिन्मयानंद जब राजनीतिक रूप से मजबूत हुए, या जिन लोगों को इन्होंने स्वयं नौकरियां दी हैं, उन्हीं लोगों को ट्रस्ट में अपना पदाधिकारी बना लिया, कार्यकारी सदस्य बना लिया। बहुत सारी शिकायतें हुई हैं, पिछले दिनों में भी हुई हैं, लेकिन आज तक कोई शिकायत पर जांच अंतिम दौर तक नहीं पहुंची। कार्रवाई होना तो बहुत बड़ी बात है।
लोगों के मुताबिक चिन्मयानंद की राजनीतिक पहुंच के चलते संस्थाओं का विकास भी हुआ, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम ये हुआ कि आश्रम समेत सभी संस्थाएं एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती गईं। हालांकि संस्थाओं में शहर के आम लोग भी नामित हैं, लेकिन उनकी भूमिका नाम मात्र को है और ये लोग खुद भी दिलचस्पी नहीं लेते। यहाँ तक कि संस्था में मौजूदा समय में भी नामित लोगों में से किसी ने बातचीत में दिलचस्पी नहीं दिखाई। शहर के रहने वाले एक व्यवसायी रामानुज कहते हैं कि एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित रहने का असर ये हुआ कि जब तक उस व्यक्ति की सत्ता कायम रही, संस्थान भी आगे बढ़ते रहे, और जब व्यक्ति आरोपों के घेरे में आया तो संस्था पर आँच आना स्वाभाविक है। समीर आत्मज मिश्र, BBC शाहजहांपुर।
आइए एक नज़र दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियों पर। तमाम अखबारों के साथ कमलेश स्टूडियो में मौजूद हैं।
हाँ, हमारे सामने जो है इंडियन एक्सप्रेस अखबार है, जिसमें खबर है कि 17 सितंबर से शुरू हो रही संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान ने इस साल 2050 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, और जिसमें 21 भारतीय मारे गए हैं। भारत में सीज फायर के उल्लंघन के दौरान घुसपैठ होने की बात भी कही है। एक और खबर इसी अखबार में है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC लागू किया जाएगा, और उन्होंने इस बारे में रिटायर्ड जज HS भल्ला से भी बात की है। इसके साथ ही अखबार के साथ एक साक्षात्कार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर उत्तर प्रदेश में भी NRC लागू किया जाएगा। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया खबर लिखता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर को लेकर परमाणु युद्ध की आशंका जताई है। उन्होंने अल जजीरा को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि अगर पाकिस्तान परंपरागत लड़ाई हारता है तो बात परमाणु युद्ध तक जा सकती है। जनसत्ता अखबार लिखता है कि केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि उत्तर भारत में नौकरी देने के लिए योग्य युवाओं की कमी है। गंगवार के इस बयान पर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। कांग्रेस और बसपा प्रमुख ने इस पर उनका विरोध किया है, इस बयान का। एक खबर है कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने और जम्मू कश्मीर में लगे प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर है कि सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले से भारत पर असर नहीं होगा, ऐसा सऊदी अरब ने भारत को आश्वासन दिया है। और हिंदुस्तान हिंदी अखबार लिखता है कि भारतीय एथलीट मयंक वैद ने दुनिया की सबसे कठिन रेस एंड्यूरोमन ट्रायथलन को रिकॉर्ड समय के साथ जीतकर इतिहास रच दिया है। इस रेस में दौड़, तैराकी और साइकिलिंग होती है। इसके अलावा नवभारत टाइम्स में एक ही खबर ये दी गई है कि बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में यौन शोषण के शिकार एक पीड़िता के साथ अब गैंगरेप हुआ है। वो अपने घर अपनी बेतिया में कार सवार चार लोगों ने शुक्रवार रात पीड़िता को उनकी कॉलोनी से अगवा कर लिया, जिसके बाद ये घटना हुई। अब पीड़िता मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
शुक्रिया कमलेश। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने बहुत पहले ये बात कही थी, लेकिन कुछ बातें और घटनाएं ऐसी होती हैं जो अक्सर नाम से ही तय होती हैं। आप माने या ना माने, नाम से फर्क तो पड़ता है। पाकिस्तान से वस्तुल्ला खान की डायरी इस बार कुछ इसी का जिक्र कर रही है।
नोतुमल ने पूरा जीवन हजारों छात्रों को शिक्षा देने में बिता दिया और रिटायर हो गया। फिर नोतुमल ने घोटकी में अपना प्राइवेट स्कूल खोल लिया और हिंदू मुसलमान बच्चों को पहले की तरह पढ़ाने लगा। कल अचानक उसके स्कूल की नवीं जमात में पढ़ने वाले एक छात्र को सर नोतुमल के लेक्चर के दौरान किसी बात पे लगा जैसे सर नोतुमल ने हजरत मोहम्मद की ईश निंदा की हो। 14 वर्ष के इस छात्र ने घर आके अपने बाप को बताया। बाप थाने पहुंच गया और सर नोतुमल के खिलाफ धारा 295 सी का पर्चा कटवा दिया। इस धारा के तहत धार्मिक हस्तियों की तौहीन पे मृत्युदंड भी मिल सकता है। यानी छात्र जिसकी उम्र अभी सिर्फ 14 वर्ष है, उसकी बात पे उसके बाप ने 100% फौरन यकीन कर लिया और पुलिस ने छात्र के बाप की बात पे यकीन कर लिया और फिर सारे घोटकी शहर ने इन तीनों की बात पे यकीन कर लिया। किसी ने 60 वर्ष से अधिक के नोतुमल से नहीं पूछा कि भैया 30 वर्ष तक शिक्षा देने के बाद आपने कल ऐसा क्या कह दिया कि 14 वर्ष का आपका छात्र इसे हजरत मोहम्मद के खिलाफ ईश निंदा समझ बैठा और फिर सारे शहर ने उसकी बात पे यकीन भी कर लिया। फिर यूं हुआ कि प्रिंसिपल नोतुमल का स्कूल जल गया, एक मंदिर पे पथराव हुआ, घोटकी की हिंदू बिरादरी ने घरों के किवाड़ बंद कर लिए और नोतुमल को पुलिस और बिरादरी के बड़ों ने जान के खौफ से कहीं महफूज जगह पे छिपा दिया। मसला ये नहीं कि नोतुमल ने मुसलमानों के पैगंबर की तौहीन की है या नहीं, मसला ये है कि अगर छान फटक के बाद नोतुमल बेगुनाह भी पाया गया तब भी उसे बाकी जीवन छुप के गुजारना पड़ेगा। अदालत भले माफ़ कर दे, जनता माफ़ नहीं करेगी। नोतुमल जो भी अपनी सफाई में कहे वो झूठ ही होगा और उस पर इल्ज़ाम लगाने वाला 14 वर्ष का छात्र सच्चा ही कहलाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे दादरी का अखलाक अहमद कुछ भी कहता रहे पर गाय का गोश्त रखने का इल्ज़ाम लग गया सो लग गया। पहलू खान ने गाय चुराई के नहीं उसको दौड़ा दौड़ा के मारने वाले धर्म रक्षक ही कहलाएंगे और अगर अदालत भी उन्हें बरी कर दे तो कसूरवार कौन हुआ? जाहिर है पहलू खान। इंसान का नाम अखलाक अहमद हो के नोतुमल, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? इल्ज़ाम लगाने वाला संजीव हो के रहमान, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? छान भटक करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर का नाम रवि हो के असलम, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? हजरत मोहम्मद की तौहीन पाकिस्तान में करने का आरोप लगे या गाय काटने का इल्ज़ाम भारत में लगे, क्या फ़र्क पड़ता है? मस्जिद गुजरात में ढाई जाए कि मंदिर सिंध में, काम तो एक ही है, क्या फ़र्क पड़ता है? आधार कार्ड पे जीवन राम लिखा हो या शिनाख्ती कार्ड पे रसूल बख्श, क्या फ़र्क पड़ता है? जब DNA ही एक है, जब दिमाग में भूसा भी एक ही तरह का भरा हुआ हो, जब लबों पे हंसी भी एक जैसी हो और दिल में कालक भी एक जैसी, तो किसी भी शय से क्या फ़र्क पड़ता है?
पाकिस्तान से वस्तुल्ला खान की डायरी के बाद सुनिए साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत के सौरभ वर्मा ने वियतनाम ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल कल अपने नाम किया। सौरभ वर्मा ने चीन के सुन फेई जियांग को 3 गेम तक चले संघर्ष के बाद 21-12, 17-21, 21-14 से हरा दिया। उधर कजाकिस्तान में जारी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के दूसरे दिन भी कल भारतीय पहलवानों की नाकामी का सिलसिला जारी रहा। 3 वजन वर्ग में ग्रीको रोमन शैली में ओलंपिक कोटे दांव पर थे, लेकिन 67 किलो भार वर्ग में मनीष, 87 किलो भार वर्ग में सुशील कुमार और 97 किलो भार वर्ग में रवि अपने अपने प्रतिद्वंदियों से हार कर बाहर हो गए। और अब समीक्षा, महेंद्र सिंह धोनी क्या कुछ और या बहुत हुआ?
धोनी को खेलना है, वो डोमेस्टिक खेल सकते हैं या फिर वो खुद सामने आके कहेंगे कि भाई मेरा इरादा ये है। मुझे लगता है कि इसमें सस्पेंस की जरूरत है नहीं और सस्पेंस होनी भी नहीं चाहिए।
ये कहना है क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन का। लेकिन धोनी को लेकर सस्पेंस तो बढ़ता ही जा रहा है। विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हार कर बाहर होने की बात अब पुरानी हो चुकी है। उसके बाद तो भारत वेस्टइंडीज को 2020 एक दिवसीय और टेस्ट सीरीज यानी तीनों खाने चित कर चुका है। लेकिन चौथा खाना धोनी का याद आना अभी भी जारी है। और पिछले दिनों तो सुबह से शाम तक अटकलों का बाजार गर्म रहा कि धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का शटर बंद करने जा रहे हैं। लेकिन ये महज अफवाह साबित हुई और इस अफवाह की वजह बने भारत के कप्तान विराट कोहली। एक तस्वीर क्या उन्होंने पोस्ट की, दुनिया में फसाना बन गया।
And a picture with me and MS and people thought MS is retiring.
चलो अभी तो धोनी के अलावा सबने सोचा कि धोनी ने दस्ताने और बैट खूंटी पर टांग दिए, अब अगर नहीं भी टांगे तो कब तक? अयाज मेमन कहते हैं,
देखिए धोनी कब तक उनको टिके रहना चाहिए वो उनकी मर्जी है। उनको 40 साल तक खेलना है या 45 तक खेलना है, मेरे ख्याल से अब ये तय करना चाहिए सिलेक्टर्स क्या चाहते हैं। और जो वो चाहते हैं वो या तो अपने इरादे से चलते रहें, या अगर वो चाहते हैं कि धोनी खेलें या धोनी की जरूरत है तो वो धोनी से उनको बात करनी चाहिए कि भाई आप बताइए आप इंटरेस्टेड है या नहीं, वरना हम किसी और को देखते हैं।
और वो और कौन है? वो तो है ऋषभ पंत। धोनी टेस्ट क्रिकेट तो छोड़ चुके हैं, इसलिए धोनी से ऋषभ पंत की तुलना केवल एक दिवसीय या 2020 क्रिकेट में ही हो सकती है। ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी दोनों विश्व कप भी साथ साथ खेले और उसके बाद धोनी तो वेस्टइंडीज गए नहीं और एक दिवसीय सीरीज में पंत चले नहीं। हाँ 2020 सीरीज में एक मैच में उनके बल्ले से नाबाद 65 रन निकले, उससे पहले 8 मैचों में 0-4, नाबाद 40, 28, 3-1, 0-4। ये टेलीफोन नंबर से रन बताते हैं कि क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में वो धोनी की जगह तो क्या परछाई भी नहीं है। पर धोनी की अहमियत अब भी इतनी क्यों है? विराट कोहली कहते हैं,
एक्सपीरियंस इज ऑलवेज गोइंग टू मैटर whether यू लाइक इट और नॉट, यू नो, एज लॉन्ग एज ही इज अवेलेबल एंड कंटिन्यूज टू प्ले ही इज ऑलवेज गोना टू बी वेरी वेरी वैल्यूएबल।
कोई माने या ना माने, अनुभव की कोई कीमत नहीं और जब तक धोनी खेलना चाहें वो टीम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अब जबकि भारतीय टीम का लक्ष्य है अगले साल होने वाले विश्व 2020 टूर्नामेंट के लिए सही टीम का चुनाव करना है, तो देखना है कि जब तक धोनी नहीं खेलते तब तक क्या कोई अन्य उनकी तरह जिम्मेदारी से क्रिकेट खेलता है या नहीं। वरना धोनी को लेकर लोग कह सकते हैं ऐसे बुरे तुम भी नहीं। उधर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल धर्मशाला में खेला गया पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश की भेंट चढ़कर रद्द हो गया। यहां तक कि मैच में टॉस तक नहीं हुआ, लेकिन भारत के स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने कल 150 अफ फॉर्मेट में लगातार चौथे IBSF विश्व बिलियर्ड्स खिताब के साथ अपने करियर का 22वां विश्व खिताब जीता। वहीं इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में केनिंगटन ओवल में खेल के चौथे ही दिन ऑस्ट्रेलिया को 135 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 399 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी पूरी पारी मैथ्यू वेड के 117 रन के सहारे 263 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ने 62 रन देकर 4 विकेट झटके। इसके साथ ही 5 मैचों की ये सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
कुछ ही देर में भारत में बजने वाले हैं 7:00, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। सुनते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। सऊदी अरब का कहना है कि दो तेल रिफाइनरी पर हमले के बावजूद वो तेल उत्पादन में कमी नहीं आने देगा। वहीं सोमवार को बाजार खुलने पर तेल की कीमतों में उछाल आया है। हांगकांग में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प जारी है। इससे पहले दोपहर में उत्तरी हिस्से में लोकतंत्र समर्थकों और चीन समर्थकों के बीच हिंसा हो गई थी। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे राउंड में स्वतंत्र उम्मीदवार कैस सईद और ट्यूनीशिया के कारोबारी व नेता नबील कहुई ने जगह बना ली है। नबील कहुई इस समय जेल में हैं। सीरियाई शहर अल राई के स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक एक अस्पताल के पास हुए कार बम विस्फोट में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए BBC हिंदी .com हमेशा आपके साथ है। नमस्कार।